नमस्कार, प्रिंट पॉड में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आज पढ़ रहा हूँ मानसी फड़के की रिपोर्ट, जिसमें वो बता रही हैं कि बिल्किस बानो के दोषी किस तरह से अपनी बेगुनाही की दलीलें दे रहे हैं। 2002 के गुजरात दंगों के बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के 11 दोषियों में एक वकील, एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक स्वयंभू सामाजिक कार्यकर्ता, एक पूर्व सरपंच के पति और एक होटल चलाने वाले शामिल हैं। इन सभी को गुजरात सरकार ने उम्र कैद की सज़ा में छूट देते हुए 15 अगस्त को गोधरा जेल से रिहा कर दिया। इन कैदियों को मिली रिहाई की खबर उस साल आई है जब गुजरात में एक नई विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। रिहा किए गए 11 दोषियों में से ज़्यादातर गुजरात के दाहोद जिले के सिंगवाड़ गांव लौट आए, जिसने फिलहाल असहज माहौल के बीच उदासीनता ओढ़ रखी है। 2002 तक बानो के परिवार का घर भी टूटी फूटी सड़कों, उबड़ खाबड़ गलियों और दुकानों व बकरियों से भरी सकरी गलियों वाले इसी गांव में था। बिल्किस बानो मामले के बारे में पूछने पर गांव वाले असहज हैं, लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं। सिंगवाड़ के एक फल विक्रेता रमेश भाई ने द प्रिंट को बताया कि 2002 के गुजरात दंगों के बाद से गांव शांतिपूर्ण है और अभी भी यहां शांति ही है। उन्होंने कहा, लेकिन मैं यहां अलग अलग समुदाय के संबंधों के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। मुझे अपने काम से मतलब है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बड़ी सावधानी से अपनी बात रखते हैं और उस समय की कहानियां सुनाते हैं जब बानो का परिवार गाँव में भैंस का दूध पहुँचाता था, बच्चे एक साथ क्रिकेट खेलते थे और लोग एक दूसरे के पारिवारिक समारोहों में शामिल होते थे। उन्हें याद है कि कुछ दोषियों के परिवारों और बानो के परिवार के बीच भी कई मौकों पर चीज़ों का लेना देना हुआ करता था। वे समय समय पर गांव के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच होने वाले मामूली झगड़े के बारे में भी बात करते हैं। दोषी और उनके परिजन अपने आप को बेगुनाह बनाए हुए हैं, जबकि बानो के परिवार के वो लोग जो अभी भी सिंगवाड़ में रहते हैं, उनका कहना है कि उनके सिर पर हमेशा चिंता के बादल बने रहते हैं। गुजरात के रंधिकपुर गांव में भीड़ ने बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया और अभियोजन पक्ष के अनुसार उसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी सालेहा भी शामिल थी। ये मार्च 2002 में गोधरा दंगों के दौरान की घटना है। उस समय बानो 19 साल की थीं और 5 माह की गर्भवती भी। बाद में उन्होंने अपने गांव सिंगवाड़ के लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें 11 लोगों को 2008 में दोषी ठहराया गया, जबकि एक की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी। हालांकि दोषियों और उनके परिजनों का कहना है कि वे निर्दोष थे और राजनीतिक कारणों से उन्हें निशाना बनाया गया था। अपराध के लिए दोषी ठहराए गए वकील राधेश्याम शाह को भी 15 अगस्त को सजा में छूट देते हुए रिहा किया गया था। वो आरोप लगाते हुए कहते हैं कि राहत शिविर में एनजीओ वालों ने बिल्किस को ये कहानी सुनाई कि हमें बलि का बकरा बनाया गया, क्योंकि मोदी जी के राजनीतिक विरोधी उन्हें निशाना बनाना चाहते थे। दिप्रिंट से फोन पर बात करते हुए शाह ने दावा किया कि 2002 में जो कुछ भी हुआ, मुझे नहीं पता था कि ये किसने किया, लेकिन उस परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी उन्होंने खोया वो गलत है। मेरी परवरिश और तहजीब ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती है। उन्होंने कहा कि लेकिन हम में से कोई भी इस घटना में किसी भी तरह से शामिल नहीं था। जेल से रिहा होने के बाद अपने गांव में 2 दिन बिताने के बाद शाह गुरुवार को पड़ोसी राज्य राजस्थान चला गया और एक मंदिर में दर्शन किए और अपने देवता को अपनी रिहाई के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने दावा किया कि वो घटना के दिन 3 मार्च 2002 को अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर पर थे, लेकिन उस समय कोई सीसीटीवी कैमरा और सेलफोन नहीं होने के कारण ऐसा साबित कर पाना मुश्किल था। वो एक और कारण बताते हैं कि क्यों वे सभी इस अपराध को करने में असमर्थ थे जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। दोषियों में 3 भाई नरेश मोढ़िया और प्रतीप मोढ़िया, शैलेश भट्ट और मितेश भट्ट, केयर भाई वोहानिया और बका भाई वोहानिया और एक चाचा भतीजे की जोड़ी जसवंत नाई और गोविंद नाई थे। शाह ने दावा किया कि उन्होंने जो कुछ भी कहा कि हमने एक के बाद एक करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके बारे में नैतिक दृष्टिकोण से सोचें, क्या कोई व्यक्ति अपने भाई के सामने ऐसा कुछ कर सकता है? यह हमारी संस्कृति नहीं है। रिहा किए गए इन 11 दोषियों में से एक गोविंद नाई के घर पर जब द प्रिंट ने गुरुवार को दौरा किया तो स्थिति सामान्य थी। एक बच्चा सीढ़ियों पर खेल रहा था। कुछ देर बाद उसकी माँ उसे वहाँ से उठा कर ले गई। उसका बड़ा भाई घर के अंदर एक छोटी साइकिल की सवारी कर रहा था। उसकी दादी की दोनों पर बराबर नजर बनी हुई थी। गोविंद नाई घर पर नहीं था, जबकि नाई का बेटा, जो नाम नहीं बताना चाहता था, बाहर निकलने की तैयारी में था। मामले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए एक बंद अध्याय है। दरअसल हम इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। यह सब होने से पहले वो गोविंद नाई के पास के गाँव के एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिंगवाड़ में रहने वाले लोगों का दावा है कि बानो का परिवार 2002 तक गांव में शांति से रहा करता था। हालांकि कुछ को उनकी गांव वालों के साथ हुई छोटी मोटी तकरार याद आती है, लेकिन वे साफ तौर पर कहते हैं कि ये पड़ोसियों के बीच वाली सामान्य तकरार हुआ करती थी। हालांकि दोषियों ने इस मामले में अपने फंसाने के लिए इन कारणों को भी उसकी एक वजह माना है। उदाहरण के लिए, अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार नरेश कुमार मोढ़िया गांव में एक होटल चलाते थे और उसने अदालत को बताया था कि उसे निशाना बनाया गया है क्योंकि होटल से निकलने वाला ड्रेनेज का पानी बानो के पिता के आंगन में चला गया था। जेल में रहते हुए मोढ़िया की मौत हो गई थी। वहीं गांव में लाला डॉक्टर के नाम से मशहूर एक अन्य दोषी विपिन जोशी ने कहा था कि उसने बानो के पिता का इलाज किया था, लेकिन उन्होंने दवाओं के पैसे नहीं दिए थे। सिंगवाड़ में जोशी का कच्चा मकान सालों से खाली पड़ा है। गांव वालों ने बताया कि गिरफ्तारी के कुछ साल बाद उसका परिवार बड़ोदरा चला गया। 11 दोषियों में से एक रमेश चंदना एक सरकारी क्लर्क थे। उन्होंने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि एक मौजूदा सरपंच के खिलाफ प्रचार करने की वजह से उस पर आरोप लगाया गया था। आखिरकार चंदना की पत्नी 2001 में गाँव की सरपंच बन गई थी। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार तीसरा दोषी शैलेश भट्ट एक सामाजिक कार्यकर्ता था। उसने अदालत से कहा कि अवैध इमारतों को तोड़ने के अभियान में शामिल था। इसमें से कई संपत्तियां मुस्लिम लोगों की थीं। सिंगवाड़ के लोगों ने कहा कि भट्ट अब ठीक से सुन नहीं पाता और उसे बोलने में भी काफ़ी मुश्किल होती है। राधेश्याम शाह ने कहा कि भट्ट ने गांव के मुखिया बनने के लिए एक मौजूदा मुस्लिम सरपंच को भी हराया था। अपने बारे में बात करते हुए उसने दावा किया कि उसे भी निशाना बनाया गया था क्योंकि 1998 में एक वकील के रूप में उसने मुस्लिम आदमियों द्वारा लाई गई दो आदिवासी लड़कियों को वापस भेजने के लिए अभियान चलाया था। हालांकि शाह का कहना है कि वो किसी राजनीतिक दल या संगठन से नहीं जुड़ा है और हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा दोषियों का मिठाइयों और जश्न के साथ स्वागत करने वाली तस्वीरें आधा सच दिखाती हैं। उसने कहा कि हाँ, हमारे दोस्तों और परिवार वालों ने हमारी आरती उतारी थी और मिठाई के साथ हमें बधाई दी थी। हम उनसे बहुत दिनों बाद मिल रहे थे, लेकिन हमारी रिहाई को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था। ऐसे बहुत से लोग वहाँ थे जिन्हें हम नहीं जानते थे, जिन्होंने हमें गुलदस्ते दिए, माला पहनाई और मिठाई खिलाई। उसने कहा कि जेल अधीक्षक ने हमें जितनी जल्दी हो सके वहाँ से जाने के लिए कहा था क्योंकि हमारा मामला संवेदनशील था और हमारा सारा ध्यान भी उसी तरफ था, लेकिन भीड़ और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था। अभी भी सिंगवाड़ में रहने वाले गाची के रिश्तेदार और परिचितों ने दिप्रिंट को बताया कि बानो के पिता अब्दुल गाची पहले गांव में भैंस के दूध की सप्लाई का बिजनेस चलाते थे। 2002 की घटना के कुछ साल बाद गाची ने अपने घर को गांव के बाहर के कुछ लोगों को एक कपड़े की दुकान चलाने के लिए पट्टे पर दे दिया था। दुकान के पीछे एक कच्चा घर है जहां बानो के चाचा अयूब अभी भी अपने परिवार के साथ रहते हैं। अयूब घर पर नहीं थे। उनके भतीजे बानो के चचेरे भाई इस्माइल गाची ने दिप्रिंट को बताया कि जब से दोषियों को रिहा किया गया है तब से वे डरे हुए हैं। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों में इस्माइल भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि पहले भी जब उनमें से कुछ पैरोल पर आते थे तो हम डर जाते थे। कुछ मामूली झगड़े भी हुए उनके रिहा होने के बाद से अब हम डर में जी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में गुजरात सरकार को बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा, स्थायी आवास और सरकारी नौकरी देने का निर्देश दिया था। उन्होंने दावा किया कि बानो को मुआवजा तो मिल गया, लेकिन परिवार अभी भी नौकरी और स्थायी आवास के इंतज़ार में है। उन्होंने यह भी कहा कि 2002 के बाद से गांव में मुस्लिमों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। उनके जैसे ज़्यादातर लोग दूसरे गाँव में रहते हैं और दिन में केवल काम के लिए सिंगवाड़ आते हैं। इस बीच कई ग्रामीणों ने दिप्रिंट को बताया कि अयूब, जिसे गांव में कई लोग बोध काका कहते हैं, वह अक्सर अपने घर के पास एक चाय की दुकान पर बैठता है जो राधेश्याम शाह के घर के ठीक सामने है। इस्माइल गाची ने कहा कि उन्होंने दोषियों के परिवारों के साथ कोई संबंध नहीं बनाए रखा, जबकि शाह का परिवार एक अलग तस्वीर पेश करता है। राधेश्याम के छोटे भाई 45 वर्षीय आशीष शाह ने कहा कि बोध काका के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। हमारे घर के ठीक सामने उनकी चाय की दुकान है। हम उनके यानी बिल्किस बानो के परिवार को सालों से जानते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पूरी तरह से शांति है। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित तिरंगा यात्रा में दोनों समुदायों ने भाग लिया था। आशीष की चूड़ियां, कंगन, झुमके और अन्य सामान की दुकान है। वो याद करते हुए बताता है कि कैसे वो और उसका भाई बानो के भाई के साथ क्रिकेट खेला करते थे। वहीं राधेश्याम के 80 साल के पिता भगवान दास शाह ने दिप्रिंट को बताया कि हमारे पास उन्हीं के यहाँ का दूध आया करता था। हमने समारोहों के दौरान एक दूसरे के घरों में खाना भी खाया है। वो कहते हैं, मेरी भी बेटियाँ हैं, मैं उनका दर्द समझता हूँ। उस समय माहौल ख़राब था, लेकिन मेरा बेटा निर्दोष है। उन्होंने आगे कहा कि हमने उसकी रिहाई के लिए 18 साल 6 महीने और 33 दिनों का इंतज़ार किया है। सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे प्रिंट पॉड के एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।